27।
जी हां हुजूर, मैं कलयुग हूं। अदीब एकदम से चौंका। उसे देखकर बोला, तुम कलयुग हो, लेकिन तुम तो वक्त हो, वक्त समय। मेरा नाम मनीषियों ने बदला है अपनी सुविधा के लिए। आजकल मेरा नाम कलयुग है और मैं अब तक आपकी अदालत में हिंदुस्तान और दारा शिकोह की बदनजीबी से भरी कहानी सुनाने और बताने के लिए रुका हुआ हूं, क्योंकि इस कहानी से ज्यादा नृशंस और बर्बर कहानी और कहीं नहीं है। अगर इजाजत हो तो सदियों पहले दिलो दिमाग में जो पाकिस्तान बना था, मैं उसकी कहानी बयान करूं। इजाजत है। और तब कलयुग ने गहरी सांस लेकर कहानी शुरू की। देवराय की युद्ध में पराजित होकर दारा अपने एकमात्र जीवित सेनापति फिरोज मेवाती और अपने बेटे सिपहर शिकोह को लेकर 14 मार्च 1659 की शाम को गुजरात कच्छ की ओर भागा। आपातग्रस्त सारी महिलाएं पहले ही हाथियों पर बैठ चुकी थीं और अन्ना सागर झील के तट पर वे दारा के विश्वस्त खोजा मकबूल की देखरेख में भागने के लिए तैयार थीं। दारा ने उदास आंखों से वक्त को देखा। वक्त ने फिर गहरी सांस ली। हुजूर आलिया, अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, रात हुई है, दारा का सिर्फ 2000 सैनिकों का लश्कर फिरोज मेवाती की कमान में बीवियों बच्चों को लिए हुए मेरता की ओर कूच कर रहा है। पूरी रात और पूरा दिन गुजरता है और मेरता से दारा गुजरात के लिए दक्षिण का रास्ता पकड़ता है। ये हुजूर, मुझे उम्मीद थी कि मेरा समधी कच्छ का राव मुझे हर हालत में पनाह देगा।
पृष्ठ 231।
तभी मेरे एक एलची ने आकर खबर दी कि औरंगजेब के फरमान के मुताबिक मिर्जा राजा जयसिंह 20,000 का लश्कर लेकर निकल पड़ा है और उसे ये हुक्म दिया गया है कि वो मुझे जिंदा या मुर्दा औरंगजेब के हुजूर में हाजिर करे। साथ ही जोधपुर के महाराजा और मेरे पुराने दोस्त जसवंत सिंह को यह हुक्म मिला है कि वो मिर्जा राजा जयसिंह का साथ दे। अदीब आलिया, मैं इल्जाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन आज इतना जरूर कहूंगा कि मैंने जिस मुश्तरका संस्कृत के लिए अपने दादाजान अकबर के बाद कोशिश की थी, उसमें मुझे औरंगजेब की ताकत ने नहीं, मेरे मुल्क और वतन के हिंदू राजे महाराजाओं ने शिकस्त दी थी। एहसान फरामोशी और भितरघात का इतना शर्मनाक रवैया ही हिंदुस्तान की सांस्कृतिक बर्बादी और तबाही की दास्तान है। जब दारा शिकोह ने यह कहा तो अब तक चुपचाप बैठी हुई तहजीब करा उठी और गहरी सांस लेकर बोली, मेरे टुकड़े तो नहीं किए जा सके, लेकिन मेरे आंचल की पुरसुकून छांव में जो करोड़ों लोग सांस ले रहे थे, वे सत्ता और महत्वाकांक्षा की आलमगीरी तलवार से काट डाले गए। हर शख्स अपना कटा हुआ सिर हथेली पर लेकर घूम रहा था और उसकी निकाल ली गई आंखों की पुतलियों के कोटर में कपास की बत्तियों की लौ कांप रही थी। अदीब ने तहजीब की ओर देखा और मेरे आला हुजूर, वो दौर ऐसा था जब कपास की बत्तियों की लौ रोशनी से ज्यादा अंधेरा पैदा कर रही थी और सोती हुई बदकार सदी के सिर का हल्का सा गड्ढा रियासत के तकिए पर मौजूद था। सियासत के अलावा में हिंदुस्तान की दोगली सदी अपना जिस्म गर्मा रही थी और शाही बिस्तरों पर ऐंठती हुई सहबत और अय्याशी की अंगड़ाइयां ले रही थी। हर हिंदू राजा और महाराजा अपनी लड़की को एक महकते गुलदस्ते की तरह सियासत के बाजार में नीलाम कर रहा था और अपनी लड़कियों के बदले में अपने आराम और आराइश के लिए खिलवतों और जागीरों का सौदा कर रहा था। हिंदू लड़कियों की बिक्री और तिजारत के लिए खुद हिंदू सौदागर बाजार में मोलभाव के लिए मौजूद था। अदीब ने गहरी नजर से तहजीब की ओर देखा तो हुजूर, तहजीब ने कहा, ऐसे बाजारू और दोगले वक्त में हारे हुए दारा शिकोह की तरफ कौन देखता, अगली सदियों की तरफ कौन नजर डालता। इसीलिए औरंगजेब से ठीक पहले का ये दौर, जब हिंदुस्तान का आदमी अपनी गैरत और अजमत की गरिमा से शून्य हो चुका था, तब इस मुल्क में परछाइयां थीं, मनुष्य नहीं था। जी हां आला हुजूर, दारा ने बीच में बात को पकड़ा, जब मैं अपनी जान और गैरत के लिए जगह जगह भागा तो मुझे मेरे दोस्त या जीते जागते अजमत पसंद लोग नहीं मिले, मुझे सिर्फ उनकी परछाइयां मिली, वो परछाइयां जिनकी पिछली परछाइयां नदारत थीं।
पृष्ठ 232।
हुजूर, लेकिन एहसानों और यादों की वो पिछली परछाइयां दारा का बहुत दूर तक साथ नहीं दे सकी, क्योंकि परछाइयां स्वतंत्र तो नहीं होती, वे व्यक्ति के साथ बदल जाती हैं। वक्त ने फिर इतिहास का सिलसिला पकड़ा। हुजूर, मैं देख रहा हूं कि अब दारा के 2000 सैनिकों का लश्कर भी तितर बितर हो चुका है। दारा पतली मलमल की बंडी और दो छदाम की चप्पल पहने वीरम गांव से कच्छ के छोटे रण की निर्जल मरुभूमि की ओर बढ़ रहा है, और अब उसके बचे हुए सैनिकों के पैरों में चप्पलें भी नहीं हैं और वे भूख और प्यास से पस्त हैं। कच्छ के रण में कोई जानवर भी नहीं जिसे मारकर वे खा सकें। वहां कटीली झाड़ियों के सिर्फ जहरीली सिंगड़ियां हैं जो उन्हें जिंदगी नहीं मौत दे सकती हैं। पानी है नहीं, वे सिर्फ मिट्टी के बर्तनों के भीगे और टूटे टुकड़ों को चूसते हुए कच्छ के रण का पार करते हुए सिंध की ओर बढ़ रहे हैं। वो इसलिए हुजूर कि मिर्जा राजा जयसिंह ने मेरे खिलाफ पूरी नाकेबंदी कर दी है। उसने एक कूटनीतिक जाल बिछा दिया है। उसने मेरे अग्रसर होने के सारे रास्तों को रोककर सिर्फ मेरे लिए समर्पण और मौत का रास्ता खुला छोड़ा है, दारा बोल रहा था। मिर्जा राजा जयसिंह ने मेरे पलायन के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। दक्षिण में सिरोही और पालनपुर, दक्षिण पूर्व में देरवाड़ा और उत्तर में काठियावाड़ तथा कच्छ का रास्ता बंद है। अब इस समय हुजूर, कलयुगी वक्त ने बयान शुरू किया, दारा शिकोह के पास सिर्फ 400 सैनिकों की कुमुक रह गई है, जिसका पीछा नमक के दलदलों को पार करती हुई मिर्जा राजा जयसिंह की सेना के 20,000 सैनिक कर रहे हैं। और अब ये हाल है हुजूर कि दारा के शिकोह पलायन करता हुआ सिंध नदी पार करके जान बचाने के लिए कंधार के रास्ते से ईरान को भागने की योजना बनाता है, पर यह भी खतरे से खाली नहीं है। इसलिए दारा शिकोह अब अफगानिस्तान की ओर सीमावर्ती कबीलों की शरण में पहुंच जाना चाहता है, क्योंकि अफगानिस्तान में दादर रियासत का वो अधिपति मलिक जीवन मौजूद है जिसे उसने अपने अब्बा शहंशाह शाहजहां के कोप और मौत की सजा से बचाया था। हिंदुस्तान के बोलन दर्रे की सीमा से 9 मील दूर दादर का यह गढ़ मौजूद था। अफगानिस्तान के इस दादर इलाके का यह सरदार मलिक जीवन है तो वर्णशंकर, पर यह हिंदू पिता की संतान है। दारा को हिंदू पठान मलिक जीवन पर बहुत विश्वास है कि वो उसकी जान बचाने का उपकार भूला नहीं होगा। अदालत में मौजूद सारे लोग वक्त की यह तहरीर बहुत गौर से सुन रहे थे। वक्त ने अपना बयान जारी रखा, हुजूर आला, जो कुछ मैं कह रहा हूं वो तारीख शुजाई में भी तहरीर बंद है।
पृष्ठ 233।
अपनी रक्षा के लिए जब पुरानी परछाइयों को पकड़ता हुआ शहजादा दारा शिकोह मलिक जीवन के सुरक्षित इलाके की ओर बढ़ता है, और बदनसीबी के हालात ये हैं कि मलिक जीवन के इलाके में पहुंचने के 2 कोस पहले ही 6 जून 1659 को दारा शिकोह की बीवी नादिरा आखिरी सांस लेती है, और दारा अपनी बीवी के गम में पागल हो जाता है। मरते मरते नादिरा ने आखिरी इच्छा यही जाहिर की है कि उसे विदेश में न दफनाया जाए, उसकी मैयत को वापस हिंदुस्तान भेज दिया जाए। शोक का ये दारुण समय था, मेरा तो सर्वस्व लुट गया था, दारा बोला। मेरी अर्धांगनी, मेरी परामर्शदात्री, मेरी शरीके हयात, मेरी शिष्या, वो सब कुछ थी। मेरा जिस्म सुन्न हो गया था और मैं अपने जिस्म की कब्र में सिर्फ सांसें ले रहा था, कहते हुए दारा बेतरह बिलख के रो पड़ा था। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि उसके आंसू पलकों तक लहरों की तरह आते और फिर वापस लौट जाते थे। अपने इन आंसुओं की हिफाजत उसी तरह करो दारा, क्योंकि सदियां तुम्हारे लिए रोएंगी। तुम्हारी आंखों के आंसू वीरान हो गए तो सदियों के दिल बंजर हो जाएंगे। तहजीब ने दारा के कंधे पर हाथ रखकर थपथपाया। हिंदुस्तानी सभ्यता तुम्हें हमेशा गीली आंखों से याद करेगी, शहंशाहों और आलमगीरों को नहीं। वक्त ने हाथ हिलाकर जैसे दुदल का साफ किया। इस वक्त हिंदुस्तान के शहजादे आलम दारा शिकोह के पास सिर्फ 70 सिपाही हैं। सिपाही शिकोह है, 4 खोजे हैं और है अपनी बीवी का शव, वो भी परदेश में। बदन पर पतली मलमल की वही बंडी और पैरों में 2 छदाम की वही चप्पलें। इसी समय मलिक जीवन अपने घर से निकलकर आता है और दारा के प्रति अपनी अकीदत पेश करता है और नादिरा के लिए संवेदना। मलिक जीवन दारा की हालत और दुख देखकर जैसे पिघल उठता है। आला हुजूर, मैं तो आपके एहसानों तले दबा हूं। मेरी एक मामूली सी गलती की वजह से जब मुल्तान के सूबेदार ने मुझे पकड़ लिया था और गिरफ्तार करके मुझे दरबार में भेज दिया था, तब आप ही ने मुझे शहंशाह के क्रोध से बचाया था, नहीं तो मुझे हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाता। आप ही ने तब मेरे प्राणों की रक्षा की थी। दारा की नम आंखों ने तब मलिक जीवन को अपनत्व से देखा था। आज आप दर बदर भटक रहे हैं, अपना देश छोड़कर परदेश में हैं और आप पर इतनी बड़ी विपत्ति टूट पड़ी है। मलिक जीवन ने अपनी आंखों से आंसुओं को सुखाते हुए कहा, इसे आप परदेश न माने। मलिक जीवन का ये देश अब आपका देश है। मैं नादिरा की मैयत को बाइज्जत लाहौर भेजना चाहता हूं। नादिरा की यही आखिरी ख्वाहिश थी कि उसे परदेश में नहीं अपने वतन में दफनाया जाए।
पृष्ठ 234।
और मैं चाहता हूं कि नादिरा को लाहौर में मियां मीर की कब्र के पवित्र सामीप्य में ही सुलाया जाए। तो इसमें दिक्कत क्या है? सारा इंतजाम हो जाएगा। आप तो हिंदुस्तान लौट नहीं सकते क्योंकि वहां आपके लिए खतरा है, और यह मुझे मालूम है कि आपको गिरफ्तार करने के लिए औरंगजेब का वो जरखरीद गुलाम बहादुर खां फौज के साथ सरहद की ओर तूफान की तरह बढ़ा आ रहा है, इसलिए यह मुनासिब नहीं है कि आप खतरा उठाएं। मलिक जीवन ने कहा, मैं नादिरा की आखिरी ख्वाहिश पूरी करके खुद कंधार की तरफ निकल जाना चाहता हूं ताकि मैं वहां से ईरान पहुंच सकूं। दारा ने अपनी इच्छा प्रकट की। सारा इंतजाम वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं, लेकिन नादिरा आपा का शव यहां बेकदरी से पड़ा रहे, ये मेरे दिल को मंजूर नहीं। मैं चाहूंगा कि जब तक नादिरा आपा की मैयत को लाहौर भेजने का प्रबंध नहीं होता, तब तक आप दादरगढ़ में हमारे साथ विश्राम करें। मलिक जीवन बोला, ठीक है मलिक जीवन, नमाज का वक्त हो रहा है, नमाज अदा करने के बाद हम नादिरा की मैयत के साथ तुम्हारे गढ़ में पहुंचने का सरंजाम करेंगे। दारा बोला और नादिरा के मृत शरीर के पास पहुंचकर उसने नमाज पढ़ने की तैयारी की तो उसके एकमात्र वफादार गुल मोहम्मद ने टोका, हुजूर, क्या आप पूरब की तरफ मुंह करके नमाज अदा करने जा रहे हैं? दारा ने गुल मोहम्मद की ओर देखा और उसे आगाह किया, गुल मोहम्मद, इन बेकार की बातों में मत पड़ो, ये नमाज जनाजा है और इस तरफ मैं नादिरा का चेहरा बखूबी देख सकता हूं। पूरब पश्चिम का भेद मत करो और याद करो कि जब अल्लाह के पाक रसूल अपने पवित्र पैगंबर मोहम्मद ने बैतुल मुकद्दस जेरूसलम के बदले काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी शुरू की थी तो ये बात यहूदियों और ईसाइयों को बहुत नागवार गुजरी थी, क्योंकि वो इन्हीं गैर जरूरी बातों पर मजहब का दारोमदार समझते थे और इन्हीं मामूली मसलों को सच और झूठ की कसौटी मानते थे। जब उन लोगों ने एतराज किया और पाक रसूल से पूछा कि आपने अपनी पूजा की दिशा क्यों बदल दी, तो पाक रसूल ने सूर्य बकर की याद दिलाई और कहा, पूरब और पश्चिम दोनों अल्लाह के हैं, इसलिए जिधर भी तुम मुड़ो उधर ही अल्लाह है। और आगे पाक पैगंबर ने कहा था कि धर्म या नेकी इसमें नहीं कि नमाज के वक्त तुमने अपने मुंह पूरब की तरफ कर लिया या पश्चिम की तरफ। मजहब यह है कि आदमी अल्लाह को माने, आखरत यानी अपने कर्मों के फल को माने, फरिश्तों को माने, सब मजहबी किताबों और सब नबियों को माने, यही पाक रसूल का संदेश है। और दारा नमाज अदा करने में मशगूल हो गया।
पृष्ठ 235।
वक्त ने इसके आगे का बयान जारी रखा, हुजूर आलिया, दारा ने जब तक नमाज अदा की तब तक पूरे इंतजाम और सम्मान के साथ मलिक जीवन नादिरा के शव को दादरगढ़ में ले जाने के लिए वापस आ गया। दारा को राहत मिली कि उसकी शरीक हयात की लाश को परदेश में लावारिसी का सदमा नहीं उठाना पड़ा और न किसी तरह की जिल्लत सहनी पड़ी। दारा ने मन ही मन मलिक जीवन का शुक्रिया अदा किया और शोक और मुसीबत के उस मौके पर पनाह देने के लिए दुआएं दी। दारा ने उदासी से वक्त की तरफ देखा और चुपचाप बैठा रहा। उसने सिर्फ एक गहरी सांस ली। अदीब ने उस गहरी सांस की मायूसी को पहचाना और वक्त से निवेदन किया कि वो अपना बयान जारी रखे। वक्त ने अगली घटनाओं का छोर पकड़ा। अदीब आलिया, दारा अब बिल्कुल टूट चुका था। दो दिन बाद दादरगढ़ से जब नादिरा बेगम के जनाजे को लाहौर ले जाने का सरंजाम हुआ तो दारा ने अपने बचे हुए वफादारों को जमा किया, जो गिनती में बहुत ज्यादा नहीं थे, और ऐलान किया, मैं हिंदुस्तान नहीं लौट सकता, लेकिन मैं किसी को अपना वतन छोड़ने के लिए बेजार और लाचार भी नहीं कर सकता। जब मैं अपनी रूह नादिरा बेगम को खुद लाहौर भेज रहा हूं तो आप सब भी वतन लौट जाने के लिए आजाद हैं। मैयत के साथ रहेंगे ख्वाजा मकबूल, जिन्होंने नादिरा की परवरिश और सेवा की है, और ख्वाजा मकबूल के साथ मैयत की सुरक्षा के लिए गुल मोहम्मद लाहौर जाएंगे। इसलिए जो लौटना चाहते हैं वो जनाजे के साथ चले जाएं, और जो रुकना चाहते हों वो मेरे साथ ईरान की तरफ कूच करने के लिए रुक जाएंगे। मैं इस बयान की तायीद करता हूं, दारा शिकोह ने कहा, और सब लोग सिपहर शिकोह और 5-7 खोजों और नौकरों को छोड़कर वापस हिंदुस्तान लौट गए। नादिरा बेगम का जनाजा लेकर गुल मोहम्मद लाहौर चला गया और अगले दिन सुबह तारीख थी 9 जून 1659, जब मलिक जीवन ने दादरगढ़ से दारा के सिपहर शिकोह और 8-10 विश्वस्त नौकरों के साथ बोलन दर्रे की तरफ प्रयाण किया। तभी एक जलजला सा आया। एकाएक बोलन दर्रे की पथरीली घाटी गड़गड़ाने लगी और उसकी चट्टानें छर्रों की तरह टूट टूट कर आसमान की तरफ उड़ने लगीं, और जून के जलते महीने में बर्फीले तूफान की ऐसी आंधियां चली कि जमींदोज चट्टानें भी ठिठुरने लगीं। वक्त, ये कैसा नजारा है जो मैं देख रहा हूं, अदीब चीखा। हुजूर आलिया, पथरी चट्टानों की रगों में दौड़ता हुआ खून एकाएक साजिशी इरादों को देखकर सर्द हो गया है, वक्त ने उत्तर दिया। वजह, अदीब ने तलखी से पूछा।
पृष्ठ 236।
हुजूर, जैसे ही हिंदुस्तान का शहजादा दारा शिकोह बोलन दर्रे से कंधार की ओर चला और पथरीली सड़क पर पहुंचा तो मलिक जीवन और उसकी बर्बर फौज ने दारा को घेर लिया। दारा के साथ ये सबसे बड़ा और घिनौना विश्वासघात था। दो दिन सत्कार करने के बाद मलिक जीवन ने ईरान की तरफ पलायन करते दारा शिकोह को सिर्फ घेर ही नहीं लिया बल्कि उसे गिरफ्तार कर लिया, और उसने दारा की गिरफ्तारी की खबर दो तेज घोड़सवारों के जरिए औरंगजेब के उन दोनों सिपह सालारों को भेज दी जो अब तक दरिया सिंध पार कर चुके थे। औरंगजेब के ये सिपह सालार थे जयपुर के महाराजा मिर्जा राजा जय सिंह और बहादुर खां। हाहाकार करती 17वीं सदी पछाड़े खाने लगी। बोलन दर्रे की सर्द चट्टानों ने शर्मसार होकर अपनी निगाहें नीचे झुका ली। आसमान पीला पड़ गया और हजारों परिंदों ने बोलन दर्रे से दिल्ली तक के फासले को अपनी लाशों से पाट दिया, और वक्त का बयान जारी था। 23 जून 1659 को मलिक जीवन ने बंदी बनाए दारा शिकोह और सिपहर शिकोह को औरंगजेब के सिपह सालार बहादुर खां के सुपुर्द कर दिया। इस विश्वासघात के लिए औरंगजेब ने मलिक जीवन को जागीरें दी, खलवत और ओहदा दिया। जी हां हुजूर आलिया, दारा शिकोह ने टिप्पणी की, उस नामुराद और एहसान फरामोश मलिक जीवन ने सिर्फ जागीरें, आराम और आराइशें ही हासिल नहीं की बल्कि मुझे धोखा देने के साथ साथ उस हिंदू पठान ने अपने जमीर को भी धोखा दिया। अपना धर्म परिवर्तन करके वो हिंदू मलिक जीवन से बदलकर मुसलमान बख्तियार खां बन गया। यहां से आगे याद रखिए कि वो मलिक जीवन ही अब बख्तियार खां है, वक्त ने कहा। मलिक जीवन उर्फ बख्तियार खां को हाजिर किया जाए, अदीब ने अपने अर्दली को हुक्म भेजा। अर्दली ने आवाज लगाई, मलिक जीवन उर्फ बख्तियार खां हाजिर हो। वो हाजिर हुआ तो दारा ने उसे हिकारत की नजर से देखा और नफरत से अपना मुंह मोड़ लिया। तुम्हारी धोखेबाजी की वजह से हिंदुस्तान के इतिहास को एक निहायत आत्मघाती मोड़ लेना पड़ा। तुम्हें अपनी इस धोखाधड़ी के बारे में क्या कहना है? अदिब ने मलिक जीवन को अपना बयान देने का मौका दिया। हुजूर आलिया, जिसे आप आज धोखेबाजी कहते हैं, हमारे दौर में यह धोखेबाजी नहीं बल्कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को परवान चढ़ाने का एक दस्तूर था। तब आदमी मजहब के लिए नहीं, अपनी सल्तनत और जागीर के लिए जीता था और जिद्दोजहद करता था।
पृष्ठ 237।
धर्म परिवर्तन तो तब एक सुविधा की बात थी। जैसे हम जंग में अपने घायल घोड़े बदलते हैं, वैसे ही हम धर्म बदलने में देर नहीं लगाते थे। हमें तो दौलत और सल्तनत की जंग जीतनी होती थी। दारा ने उसे एक बार फिर हिकारत से देखा, पर कोई दखल नहीं दिया। जब मुझे पता चल गया कि मुगलिया सल्तनत की जंग में दारा परास्त होकर कंधार की तरफ पलायन कर रहा है, तभी मैंने समझ लिया था कि इससे ज्यादा कारगर मौका फिर मेरे हाथ नहीं आने वाला है। इसलिए मैं इस ताक में था कि दारा कब मेरे इलाके में कदम रखता है। ये वक्त जो आज आपके सामने बड़ी दिलेरी से बयान दे रहा है, इससे बड़ी और खूंखार मौका परस्ती की मिसाल आपको दूसरी नहीं मिलेगी। उस दौर में यही वक्त मेरा दोस्त था और इसने मेरा साथ दिया था। नादिरा बेगम की मौत ने मुझे नायाब मौका दिया और मैंने दारा शिकोह और सिपहर शिकोह को अपनी भलमनसाहत की गिरफ्त में ले लिया। अदीब जैसे एकाएक विचलित हुआ और चीखा, कौन सी जगह है ये जहां से दिल दहला देने वाले खामोश विलाप की आवाजें आ रही हैं? और ये कैसी है आंसुओं की नदी जो मेरी तरफ पड़ती आ रही है, और मैं देख रहा हूं कि उस इलाके के सारे दरख्तों की पत्तियां सूख कर झड़ रही हैं। कौन सी है ये जगह और यहां ये अनहोनी कैसे हो रही है? तो कलयुग ने आदर से दखल दिया। अदीब आलिया, खामोश विलाप की आवाजें तभी दिल पर दस्तक देती हैं जब इंसानी उसूलों की हत्या होती है, और आंसुओं की नदी तभी उमड़ती है जब कोई संस्कृति सूखने वाली होती है। तब आदमी की लाचारी के आंसू उसकी आंखों से बहते नहीं दिखाई देते, बल्कि वे जमीन में जज्ब होकर उस दिशा में बह निकलते हैं जहां कोई नई संस्कृति जन्म ले रही होती है। हुजूर आलिया, आदमी के आंसू ही नई संस्कृतियों को पैदा करके उसे सींचते हैं। जिस संस्कृति के आंसू सूख जाते हैं वो उजड़ जाती है। लेकिन मुझे मेरी बात का जवाब नहीं मिला। ये जगह कौन सी है जहां से आंसुओं की नदी एकाएक बह निकली है और सारे दरख्तों की पत्तियां सूख कर झड़ रही हैं? अदीब ने पूछा। हुजूर, वक्त ने बताया, ये जगह दिल्ली है और यहां एक उजड़ती तहजीब का ये मंजर इसलिए मौजूद हुआ है कि एहसान फरामोश, विश्वासघाती पठान मलिक जीवन, दारा शिकोह और सिपहर शिकोह को बंदी बनाकर मिर्जा राजा जयसिंह और बहादुर खां के साथ दिल्ली पहुंच चुका है। इसीलिए दिल्ली बिलख रही है और इस वक्त दिल्ली का नजारा यह है। दारा और उसके बेटे सिपहर शिकोह को नजर बेग की सख्त निगरानी में रख दिया गया है। तवारीख का यह दिन 23 अगस्त सन 1659 का है। नजर बेग अपने आका औरंगजेब का बहुत ही विश्वस्त गुलाम है।
पृष्ठ 238।
नजर बेग ने दारा और सिपहर शिकोह को दिल्ली शाहजहानाबाद वाली सड़क के मोहल्ले खवासपुर की एक हवेली में बंदी बनाकर रख दिया है। यह हवेली 3 मील दक्षिण में है। 2 दिन बाद नजर बेग औरंगजेब के सामने हाजिर हुआ और उसने बंदियों की हालत का पूरा ब्यौरा पेश किया। ये दिन है 25 अगस्त 1659 का। 4 दिन बाद औरंगजेब हुक्म देता है कि काफिर दारा और उसके बेटे का सार्वजनिक अपमान किया जाए। ये 29 अगस्त 1659 की बात है। ये उसी दिन की बात है। विशाल शाही सेना की पहरेदारी में दारा का ये अपमान जुलूस शाहजहानाबाद की मुख्य सड़कों से निकाला जाता है और दिल्ली की प्रजा के सामने ये सबूत पेश किया जाता है कि असली दारा शिकोह यही है। बंदियों को खासतौर से मोटे और गंदे कपड़े पहनाए गए हैं। उन्हें शाही पगड़ियों की जगह मामूली पगड़ियां दी गई हैं और ऊपर लपेटने के लिए फटी हुई सूती कश्मीरी शालें दी गई हैं। वो शालें महल के नौकर चाकरों और दासों को पहनने के लिए ली जाती हैं। 2 बूढ़ी हथनियों को बदबूदार गंदगी और मैले से सजाया गया है। ایک پر سپہر شکو ہے اور اس کے ہودے کے پیچھے نظر بیگ ننگی تلوار لیے موجود ہے۔ دارا کی ہتھنی کے ساتھ ساتھ ملک جیون عرف بختیار خان خود گھوڑے پر تعینات ہے اور اشواروہی سینکوں کا ایک دستہ اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ سب سے آگے ہاتھی پر سوار ہے بہادر خان جو دارا شکوہ کے اس ذلت بھرے جلوس کا نیتتو کر رہا ہے، اور اب ذلت کا یہ جلوس لاہوری دروازے سے ہوتا ہوا ان جگہوں سے گزر رہا ہے جو دارا شکوہ سے وابستہ رہی ہیں۔ اپمان کے اس طوفان کو برداشت کرتا ہوا دارا سر جھکائے ہاتھی کے ہودے پر بیٹھا ہے اور جلوس آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ سڑکوں پر دونوں اور غمگین بھیڑ ہے۔ وہ اپنے چہتے شہزادے کو اس حال میں دیکھ کر بے حد دکھی، نراش اور بے بس ہیں۔ ان کی آنکھوں کے آنسو زمین دوز ہو گئے ہیں۔ تبھی لاہوری دروازے کے پاس بھیڑ میں کھڑا ایک بھکاری چلا اٹھتا ہے، شہزادے دارا شکوہ، آپ نے ہمیں ہمیشہ بھیک دی ہے، لیکن ہم بد نصیبوں کے پاس آج آپ کی مہربانیوں کے بدلے میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ دارا نے اس بھکاری کو آنکھ اٹھا کر دیکھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے ہیں۔ دارا نے بربدا کر کہا، میرے پاس اور تو کچھ نہیں، لیکن کچھ آنسو ابھی بھی باقی بچے ہیں، اور یہ ان ہندوستانیوں کے لیے ہیں جو میری ہی طرح بد نصیب ہیں۔ لو، میرے ان آنسوؤں کو سنبھالو، اگر تم نے ان آنسوؤں کو سوکھنے نہ دیا تو کسی اور دارا شکوہ کو تم پھر جنم دے سکو گے۔
پرشت 239۔
دارا کی خاموش آنسو بھری آنکھیں جب یہ پیغام دے رہی تھیں، اس وقت کا چشمدید گواہ میں ہوں۔ ایک فرنگی سے لگتے آدمی نے بیچ میں دخل دیا، تم کون ہو؟ اردلی نے دریافت کیا، میں بڑنے ہوں، میں ایک یاتری بھی ہوں اور دارا شکوہ کا دوست اور اس کا وید بھی۔ دارا کے ان کٹھنتم دنوں میں میں اس کے ساتھ رہا ہوں۔ جب دارا کو اپمانت کرنے کے لیے اس کا جلوس نکالا گیا تو چاندنی چوک سے سعد اللہ خان بازار تک شوک سنتپت لوگوں کی بے پناہ بھیڑ تھی اور وہ سب ولاپ کر رہے تھے۔ ولاپ کی آوازوں کا ایک چندوا ستن گیا تھا، کرندن کرتی آوازوں کا چندوا میں نے اپنے جیون میں پہلی بار دیکھا تھا۔ آخر قلعے کی دیواروں سے ہوتا ہوا وہ لجہ جلوس خجر آباد واپس پہنچا اور خواص پورہ کی اسی حویلی میں دارا اور سپہر شکوہ کو پھر قید کر دیا گیا۔ جلوس جب گزر رہا تھا تب دلی کی عام پرجا کا غصہ آنکھوں کے کڑاہوں میں ابل رہا تھا اور ان کی شوک سنتپت سانسوں کو جھلسانے والی آندھیوں نے راجدھانی کے پورے علاقے کو اپنی چپیٹ میں لے لیا تھا۔ جب پرجا کے دارا پریم کے اس اندھر نے اورنگزیب کو گھیرا اور خاموش پرتیواد کے اس طوفان کی خبر اسے ملی تو وہ بھیتر ہی بھیتر تھرا اٹھا تھا۔ یہ بیان کلیوگ کا تھا۔ اورنگزیب کو لگا تھا کہ پرجا ودروہ کر سکتی ہے اور دارا شکوہ کی زندگی اور آزادی کے لیے جان بھی دے سکتی ہے، تو وہ چنتاگرست ہو گیا تھا۔ چنتاگرست ہی نہیں، وہ وکشپت ہونے کی حالت تک پہنچ گیا تھا۔ اس کا پورا شریر پسینے پسینے تھا اور اس کی انگلیاں اور پسلیاں کانپ رہی تھیں۔ وہ بھےگرست تھا، وہ پوری رات سو نہیں پایا تھا۔ وہ شنکا کی اسی اوسن اوستھا میں اپنے ککش کی دیواروں اور سامنے پھیلی کالی رات کی گھنگور سیاہی کو دیکھ رہا تھا۔ اس سیاہ رات کے اندھیرے میں اسے اپنا بھوشیہ دکھائی نہیں پڑ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کہ اس کا ورتمان جگہ جگہ سے درک کر ٹوٹ گیا ہو اور وہ اپنی کرنی کے ملبے میں دب گیا ہو۔ یا اللہ، چیختے ہوئے اورنگزیب اپنی پیشانی کا پسینہ پوچھتا ہوا کخش کی دیوار سے ٹکرایا تو روشن دارا نے اسے آ کر سنبھالا۔ اے میرے سوبھاگیشالی بھائی، یہ وقت اوہا پوہ اور سمبھرم کا نہیں، یہ سمے نرنائک آگھات کا ہے۔ تمہیں تاریخ نے یہ موقع دیا ہے جو دنیا میں اس وقت کسی کو حاصل نہیں ہے، اس لیے اپنی آتما کے رشتے اس پسینے کو پوچھو اور دارا شکوہ پر فیصلہ کن وار کرو۔
پرشت 240۔
آپا، اورنگزیب نے آہت ہوتے ہوئے کہا، آپا میں کیا کروں؟ بھائی جان، دارا شکوہ کو کوئی بھی سزا دیتے ہوئے میری آتما کانپتی ہے۔ ہندوستان کی ساری پرجا اسے چاہتی ہے۔ آج کے موجودہ ماحول کی جو اندرونی خبریں مجھے ملی ہیں وہ ہولناک ہیں اور ہندوستان خاص طور سے دلی کی پرجا کبھی بھی میرے خلاف ودروہ کر سکتی ہے۔ تو اس ودروہ کو دبانے کا ایک طریقہ ہے، روشن آرا نے کہا۔ کیا؟ یہی کہ ہندوستانی پرجا کی مذہب پرستی اور مذہب کے لیے اس کی آدھار بھوت کمزوری کا تم اس نازک وقت میں فائدہ اٹھاؤ۔ روشن آرا نے اسے گہرا سجھاؤ دیا۔ کیسے کیسے؟ اورنگزیب نے اپنی پتلی اور لگ بھگ خاموش آواز میں پوچھا۔ وہ ایسے کہ تم دارا شکوہ کے خلاف کافر اور انیکیشوروادی ہونے کا الزام لگا کر علماؤں سے اس کی سزائے موت کا فتویٰ جاری کروا دو۔ روشن آرا نے رائے دی۔ لیکن ایسا فتویٰ جاری کروانا کیسے ممکن ہوگا؟ اورنگزیب نے جاننا چاہا۔ میں ان ملا مولویوں اور علماؤں کی نس نس پہچانتی ہوں۔ یہ عرب اور ایران نہیں ہے، یہ ہندوستان ہے، اور یہاں شاہی سطح کے سامنے انہوں نے ہمیشہ دم ہلائی ہے۔ روشن آرا نے کہا، تم ابھی ان کی سبھا بلاؤ اور اپنا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے دارا کی زندگی کے بارے میں بہت شائستگی سے فیصلے کا حق انہیں سونپ دو، اور تم دیکھنا ان کا فیصلہ وہی ہوگا جو تمہارا اور میرا فیصلہ ہے۔ بھیبھیت اورنگزیب نے سبھا بلائی۔ سب لوگ شام کو قلعے کے دیوان خاص میں جمع ہوئے۔ روشن آرا نے دھیرے سے اورنگزیب کے کان میں کہا، تم خاموش رہنا اور کوٹنیتی سے کام لیتے ہوئے صرف اس بات کی کوشش کرنا کہ دارا کو پران دنڈ دیے جانے کا میرا اور تمہارا فیصلہ سب کا فیصلہ بن جائے، تاکہ تاریخ ہمیں دوشی نہ ٹھہرائے اور آنے والی صدیوں میں یہی کہا جائے کہ یہ فیصلہ عام رائے سے ہوا تھا، اور یہ کہ اورنگزیب اپنے ملاؤں اور خاص الخاص درباریوں کا یہ فیصلہ ماننے اور منظور کرنے کے لیے مجبور تھا، کیونکہ عام اور اعلی دماغوں کی رائے کی اوگیا نہیں کی جا سکتی۔ اس شام دیوان خاص میں چل رہی اس کوٹنیٹک سبھا میں اتساہ یا نیائے کا ماحول نہیں بلکہ ماتم کا ماحول تھا۔ اہم اور خاص درباری جیسے راجکاج کا کوئی سنگین مسئلہ سلجھانے یا اس پر فیصلہ لینے کے لیے موجود نہیں تھے، بلکہ فاتحہ پڑھنے آئے تھے۔ یہ کوٹنیٹک سبھا زیادہ دیر تک نہیں چلی، کیونکہ فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ علماؤں کو تو اس پر صرف مہر لگانی تھی۔ درباری دانشمند دارا کا گھور ویرودھی تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے سبھا کے پورو نرنے کو جانتے ہوئے بھی دارا شکوہ کو پران دنڈ دیے جانے کا ویرودھ کیا۔
پرشٹھ 241۔
اس نے کہا، شہزادی دارا کو پران دنڈ دیے جانے کا کوئی کارن یا اوچت نہیں ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ شہزادے دارا شکوہ اور اس کے بیٹے سپہر شکوہ کو گوالیر کے قلعے میں قید کر دیا جائے اور انہیں عمر قید دے کر وہاں سخت پہرہ لگا دیا جائے۔ سبھا میں اس بات سے کچھ سنگن ہوئی، اور دانشمند جیسے خاص درباری کی رائے سے جب روشن آرا کو بازی پلٹ جانے کا اندیشہ ہوا تو اس نے پھر اورنگزیب کے کان میں کہا، اگر یہی فیصلہ ہوتا ہے تو دارا کو عمر قید میں ڈال کر ارہر کی دال کے ساتھ افیم کا پانی دے دے کر اسے دھیرے دھیرے مرنے کے لیے مجبور کر دیا جائے۔ نہیں، میں اس رائے سے سہمت نہیں ہوں، اورنگزیب نے دھیرے سے روشن آرا سے کہا، اور اسی وقت اس کے ذہن میں آیا کہ دارا سے نپٹنے کے بعد اسے عیاش مراد بخش سے بھی نپٹنا ہے۔ اس عیاش کے خاتمے کے لیے روشن آرا والا نسخہ خاصا کارگر رہے گا۔ اس نسخے کو مراد پر لاگو کرنے کے لیے اس نے من ہی من گانٹھ باندھ لی۔ تب تک گھور دارا ویرودھی درباری خلیل اللہ خان، شائستہ خان اور حکیم تبرخ خان نے دانشمند کی رائے کی بازی پلٹ دی تھی۔ یہ کرشمہ ہونا ہی تھا۔ علماء، ملا، مولوی تو شروع سے ہی ودھرمی دارا کے خلاف تھے۔ شریعت اور مذہب کے ودوانوں، دھرم شاستریوں کو دارا سے طرح طرح کے خطرے تھے۔ ان کا خون پہلے سے ہی ابل رہا تھا، اور انہوں نے درباری دانشمند کے ہستکشیپ کو اسویکار کر کے دارا شکوہ کے ورد موت کا فتویٰ جاری کر دیا۔ کلیوگ بولا، روشن آرا اور اورنگزیب نے راحت کی سانس لی کہ دارا شکوہ کو اسلام ورودھی گھوشت کر کے موت دینے کی سزا دھرم شاستریوں نے تجویز کر دی ہے۔ مغلیہ سلطنت کا تاج حاصل کرنے اور شہنشاہ بننے کی اس کی چھپی ہوس کو اس دھرماگیا نے ظاہر ہونے کے خطرے سے بچا لیا تھا، کیونکہ اگر اورنگزیب کے چھپے ہوئے ارادے کھلے عام سامنے آ جاتے تو پورا ہندوستان گرہ یدھ کا خونی میدان بن جاتا، اور قریب قریب ہوا بھی وہی لیکن چھوٹے پیمانے پر اس نے یہی ظاہر کیا کہ وہ مذہبی فتوے کے سامنے بے بس ہے۔ کہتے ہوئے کلیوگ نے حضرت شبلی نعمانی کی طرف نگاہ ڈالی۔ وہ سست اور پشیمان سے بیٹھے تھے۔ ادیب کو ان کی اس پشیمانی سے تکلیف ہوئی اور اسے خود بھی برا لگا۔ آخر شبلی نعمانی اس کے بزرگ ہی نہیں، اس کی برادری کے اعلیٰ ترین ودوان بھی تھے۔ ان کی خاموشی سے آہت ہو کر ادیب نے کہا، اے اعلیٰ حضور، آپ کی پشیمانی ہمیں وچلت کرتی ہے، لیکن کیا کریں، ہر صدی کو اپنا سچ تلاشنے کی آزادی ہے۔
پرشت 242۔
اور حضور اعلیٰ، آپ بھی جانتے ہیں سچ تو انسان کی ادات آکانکشاؤں کا ایک سپنا ہے، اس لیے ہر صدی میں سچ انسانی شبھ کے لیے تہذیب کی بھٹی میں تپا کر پھر شدھ کر لیا جاتا ہے۔ سچ کبھی اشدھ رہ ہی نہیں سکتا۔ شبلی نعمانی نے ادیب کو گہری نگاہوں سے دیکھا، جیسے وہ اس کی بات سے بہت حد تک سہمت سے ہو رہے ہوں، پر کچھ سوچ کر انہوں نے ٹپڑی کی۔ ادیب عالیہ، میں نے جو کچھ بھی عالمگیر کے بارے میں لکھا ہے وہ اس ویکتی کا سچ ہے، اور اس سچ نے 17ویں صدی کی تقدیر کا فیصلہ کیا ہے۔ کہ تبھی اپنے پیجامے کا ناڑا گھسیڑتے اور دوسرے ہاتھ میں چھڑی اور سگریٹ تھامے رگھوپتی صاحب فراق اپنی بڑی بڑی پانی دار آنکھوں سے عدالت کے مجلس کو دیکھتے ہوئے اپستھت ہوئے اور سگریٹ کا ایک گہرا کش لے کر دھواں اگلتے ہوئے بولے، حضرات، کوئی بھی انسان کتنا ہی بڑا ہو، اس کا سچ کسی قوم کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ حق شہنشاہوں اور تاناشاہوں کو بھی نہیں، کیونکہ تقدیر تو قوموں کی ہوا کرتی ہے، ایک انسان کی تقدیر کوئی تقدیر نہیں۔ اور شبلی نعمانی صاحب، آپ کا عالمگیر صرف ایک شخص تھا، شہزادہ تھا، وہ اپنے دور کا رہنما نہیں تھا۔ کہتے سگریٹ کا ایک کش اور لیتے اپنی رو میں فراق جیسے آئے تھے ویسے ہی لوٹ گئے۔ تہذیب نے انہیں روکا بھی، لیکن فراق صاحب نہیں رکے، مجلس دیکھتی رہ گئی۔ آخر اردلی نے کلیوگ کو بیان جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ کلیوگ نے آگے کا حوال بتایا، ادیب عالیہ، داراشکوہ کو موت دی جائے، یہ فتویٰ جاری کرنے کے بعد شڑیانترکاریوں کا دربار برخاست ہوا اور دوسرے ہی دن صبح دیوان عام میں ایک خاص جلسہ ہوا۔ یہ سن 1659 کے اگست کی تاریخ 30 تھی۔ یہ جلسہ ملک جیون کو سمانت کرنے کے لیے آیوجت تھا۔ داراشکوہ کے ساتھ بڑھتی گئی گھور غداری اور اورنگزیب کے لیے کی گئی وفاداری کے انعام کے طور پر ملک جیون کو بختیار خان کا نام دیا گیا اور اسے مغل سامنت ورگ میں ملک ہزاری بنایا گیا۔ دارے کے ساتھ کیے گئے وشواس گھات کا انعام لے کر جب ملک ہزاری بختیار خان سینہ تانے اپنے افغان سینکوں کے ساتھ چاندنی چوک سے گزرا تو دلی کی عام جنتا اپنا کھولتا کروھ نہیں روک پائی اور اس نے ملک ہزاری بختیار خان اور اس کے سینک دستے پر حملہ کر دیا اور وپلو شروع ہو گیا۔ بھیانک مار کاٹ ہوئی۔ عورتوں نے اس پر گالیوں، کوڑے کچرے اور مل موتر کے کوجوں کی بوچھار کی۔ مردہ جانوروں کی اتڑیاں اس پر پھینکی گئیں اور چولہوں کی جلتی لکڑیاں اور انگاروں سے اس پر وار کیا گیا۔ اس ودروہ میں ملک ہزاری بختیار خان کے کئی سو افغان سینک مارے گئے۔ اس بھڑکے ودروہ کو اگر دلی کا کوتوال وقت رہتے نہ دباتا تو ملک ہزاری بختیار خان زندہ نہیں بچ سکتا تھا۔
پرشت 243۔
شام ہوتے ہوتے دلی میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ عام آدمی کے اس ودروہ نے داراشکوہ کے انت سمے کو اور پاس لا دیا۔ میں اس کی تائید کرتا ہوں، بدنے نے سر ہلا کر کہا۔ میں اس وقت ہوئی بھیانک مارکاٹ کا چشمدید گواہ ہوں اور عالمگیر نامہ نامک اتہاس کی اس پستک کو میں ادھیڑنا چاہوں گا جو کہتی ہے کہ داراشکوہ کو صرف دھارمک فتوے کے تحت قتل کیا گیا۔ دھارمک فتویٰ تو ایک بہانہ تھا، کیونکہ اورنگزیب داراشکوہ کی ہتیا کرنے کی بات پہلے ہی طے کر چکا تھا۔ اگر دارا کی ہتیا پہلے سے طے نہیں تھی تو پھر ملک جیون کو بختیار خان کی پدوی دینے اور ملک ہزاری بنانے کی کیا وجہ اور ضرورت تھی؟ داراشکوہ کے ساتھ وشواس گھات کرنے کا ہی یہ انعام اسے دیا گیا تھا۔ اس رات دلی ویران تھی اور چاروں طرف موت منڈرا رہی تھی، اور اس خوفناک رات کے اندھیرے میں اورنگزیب نے اپنے سب سے وشوست ودھک نظر کلی بیگ کو بلایا۔ उस कुबड़े ने आकर कोर्निश की तो औरंगजेब ने हुक्म दिया, खवासपुरा की हवेली में जाओ, सिपहर शिकोह को उसके बाप से अलग करो और उस काफिर दारा शिकोह का सिर धड़ से अलग करके मेरे सामने पेश करो। इस काम को अंजाम देने में शफी खां तुम्हारे साथ रहेगा। वो भयानक रात थी, 30 अगस्त 1659, खवासपुरी की वो हवेली, उसमें दारा शिकोह का अंधेरा कक्ष, साथ में सिपहर शिकोह। कुबड़े नजर बेग और शफी खां ने जिस समय दारा के कक्ष में कदम रखा, उस समय शहजादा दारा शिकोह मसूर की दाल पका रहा था। उन दोनों को देखते ही दारा को अनिष्ट की आशंका हुई। वधिक नजर बेग की ओर देखकर दारा ने सवाल किया, तुम इस वक्त क्यों और किस लिए? आदेश है कि सिपहर शिकोह को आपसे अलग कर दिया जाए, नजर बेग ने कहा। सिपहर शिकोह यह सुनकर चौकन्ना हुआ। क्या तुम्हें हमारी हत्या के लिए भेजा गया है? दारा ने सख्ती से पूछा। इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, कुबड़े नजर बेग ने ही जवाब दिया और सिपहर शिकोह से बोला, उठो। सिपहर शिकोह भयाक्रांत हुआ और वो दारा के घुटने से अपना घुटना सटाकर बैठ गया। तभी शफी खां और नजर बेग ने उसे अलग करने के लिए पकड़कर खींचा। दारा ये बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो चीखा, शाही खून की तौहीन की तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन दारा की नाराजगी और सिपहर शिकोह की चीखने चिल्लाने पर उन दोनों वधिकों ने कोई ध्यान नहीं दिया।
पृष्ठ 244।
उन्हें तो अपने शहंशाह औरंगजेब के हुक्म की तामील करना था। काल कक्ष में दारा के पास अपनी हिफाजत के लिए कोई हथियार नहीं था। उसने कलम तराशने वाला सिर्फ एक छोटा सा चाकू तकिए में छिपा रखा था। उसे निकालकर दारा ने खुद को बचाते और सिपहर शिकोह को अपनी ओर खींचते हुए उन दोनों पर वार किया। इस बीच जल्लाद नजर बेग ने खंजर निकालकर सिपहर शिकोह की बांह चीर दी। सिपहर दर्द से चीख पड़ा। दारा ने फिर भी अपनी ताकत भर उन दोनों जल्लादों का मुकाबला किया और किसी तरह सिपहर शिकोह को उनकी गिरफ्त से छुड़ा लिया और चीखा, जाओ और मेरे उस जालिम भाई से कहो, इस मासूम ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा है, इसे मुझसे जुदा न करे। हम किसी के संदेश वाहक नहीं हैं, हमें तो सिर्फ आलमगीर के हुक्म का पालन करना है, कुबड़ा कसाई नजर बेग बोला। और हम वही कर रहे हैं, कहते हुए शफी खां ने जख्मी सिपहर को फिर अपनी गिरफ्त में ले लिया। दारा को अब कोई संदेह नहीं रह गया था। वो अंतिम रूप से जान गया था कि उसकी मौत का हुक्म जारी हो चुका है। और जब शफी खां और नजर बेग सिपहर को घसीटते हुए उस काल कोठरी से बाहर ले जा रहे थे तो दारा ने उसी छोटे कलम तराश चाकू से शफी खां पर वार कर दिया। वो चाकू शफी खां की एक पसली में जकड़ कर रह गया था। उन दोनों जल्लादों ने सिपहर शिकोह को कक्ष के बाहर इंतजार करते सैनिकों के हवाले करके दारा के कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया। सिपहर की बांह से टपके हुए खून की अंदर आती काली लकीर देखकर दारा दहल रहा था, पर अब कोई चारा नहीं था। दीवार के उस पार वाले कक्ष से जब सिपहर शिकोह की भयावनी चीखें आ रही थीं कि जैसे उसकी बोटी बोटी काटी जा रही हो, मेरे बेटे पर यह जुल्म मत करो, जाकर उस जालिम आलमगीर को बताओ कि वो नमाजी नहीं ढोंगी है, वो इबादती होने के साथ साथ गुनहगार भी है। मैंने इबादत न की हो लेकिन मैंने खुद को हमेशा गुनाह से बचाया है। उससे कहो, याद करे पाक जाबिर ने क्या कहा है, इबादत करने वाला उसके बराबर नहीं हो सकता जो गुनाह से खुद को बचाता है। उसे जाके बताओ कि उसके मुल्लाओं का फतवा सिर्फ गुनाह है, कुफ्र है। तभी सिपहर की चीखों ने उसे परास्त कर दिया। वो बोला, सिपहर को बख्श दो और तुम्हें जो भी हुक्म लागू करना हो उसकी तामील मुझ पर करो।
पृष्ठ 245।
तभी अदालत के ऊपर अंधेरा छाने लगा। अदीब ने हैरत से चारों ओर देखा, वो अजीब माहौल था। आसमान के आधे सितारे बुझते चले जा रहे थे और आधे फूट फूट कर चमकीली किरचों की तरह जमीन की ओर आ रहे थे। चांद के ऊपर जमा बादल धज्जियों की तरह फट गए थे और चांद एक भयानक आवाज के साथ शीशे की तरह जगह जगह से दरक गया था। अदीब यह दृश्य देखकर घबरा उठा। उसने अर्दली से पूछा, ये क्या है, ये क्या हो रहा है? हुजूर, वक्त पीछे लौट गया है। ये 30 अगस्त 1659 की रात का आखिरी पहर है। 31 अगस्त 1659 की सुबह होने वाली है, लेकिन सुबह हो नहीं पा रही है क्योंकि सूरज काला लबादा ओढ़कर शोक मना रहा है। सूरज शोक मना रहा है? अदीब ने हैरत से पूछा। जी हुजूर, खवासपुरा की उस हवेली में मसूर की दाल की खलबदाती बटलुई अब सिर्फ गर्म सांसें ले रही है क्योंकि दारा शिकोह का कत्ल किया जा रहा है। कत्ल किया जा रहा है? लेकिन ये कलमे की कैसी आवाज आ रही है? ये दारा शिकोह की आवाज है हुजूर। अब वो कलमे शहादत पढ़ चुका है और अब उसकी गर्दन धड़ से अलग हो चुकी है। अंधेरा और सन्नाटा छा गया था। सूरज काला शोक वस्त्र पहने धरती की कोर से झांक रहा था। अदीब आलिया, जब सूरज ने काला लबादा पहनकर झांका, उसी वक्त दारा का कटा हुआ सिर औरंगजेब के पास लाया गया। कलयुग ने आगे बताया, औरंगजेब एकाएक इतनी ताब नहीं ला पाया कि वो उस कटे हुए सिर को देखे, लेकिन देखना तो था ही, ताकि यकीन करके निश्चिंत हो सके कि वो सिर दारा का ही है। जब उसे यकीन हो गया तो वो अपनी आदत के खिलाफ जोर से चीखा, ए बदबख्त, मुझे तुझ काफिर का मुंह देखना गवारा नहीं है। कहते हुए औरंगजेब ने मुंह फेर लिया और हुक्म दिया, इसका खून साफ कर दिया जाए और इसे एक बड़ी रकाबी में रख दिया जाए। तभी रोशनारा बेगम औरंगजेब के कक्ष में आई और उसने अगला हुक्म दिया, दारा शिकोह के सिर को सुगंधित करके एक संदूक में बंद करो और इस सिर को आलमगीर की तरफ से अब्बा हुजूर के पास तोहफे के तौर पर भिजवा दो। हुक्म की तामील करने के लिए दारा का रक्त से सना सिर लेकर नजर बेग और शफी खां चले गए। दारा शिकोह के कत्ल की खबर जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल गई। और तब एक अजीब नजारा पेश आया। अदीब ने सामने देखा, चांदी से चमकते चार पंख धरती पर पड़े थे।
पृष्ठ 246।
चौंक कर अदीब ने अर्दली से पूछा, ये पंख, ये किसके हैं? हुजूर, ये पंख उन फरिश्तों के हैं जो दारा शिकोह की रूह को बाइज्जत साथ ले जाने के लिए आए थे। ये फरिश्ते दारा के कत्ल का सदमा सह नहीं पाए और उनके ये खूबसूरत पंख खुद ही झड़ पड़े हैं। अदीब ने भी एक अजीब सा सदमा महसूस किया और उसने दारा की तरफ देखा। दारा की नजरें उससे मिली और वो धीरे धीरे बुदबुदाया, मुझे तो वहीं तक का हादसा याद है जहां तक मैंने कलमा पढ़ा था। उसके बाद मुझ पर एक अजीब सी रूहानी बेहोशी तारी हो गई, दारा ने कहा, लेकिन मेरा सिर कलम किए जाने के बाद क्या क्या हुआ, ये जानना मेरे लिए एक हौलनाक अनुभव है। सबसे ज्यादा हौलनाक मंजर तो यह है कि जिस दिन दारा शिकोह का सिर कलम हुआ, उसी दिन हिंदुस्तान की बनती एक सहिष्णु और नई तहजीब का सिर भी कलम हो गया। तहजीब बहुत दुखी स्वर में बोली, क्योंकि हिंदुस्तान की बनती नई तहजीब के लिए दारा शिकोह ने जो कुछ कहा और सोचा था वो दारा ने नहीं, वही तो सदियों पहले नबी ने कहा था। इतना कहकर तहजीब ने अपने आंसू पोछे और वो उदास सी पीछे सरक कर बैठ गई। फिर धीरे से बुदबुदाई, तभी से मैं अधूरी हूं। उसी वक्त चांदनी चौक की दोनों दिशाओं से दो जुलूस निकलने लगे। एक जुलूस का नजारा तो बहुत ही हैरतअंगेज था। उस जुलूस में हजारों की तादाद में मुंड रहित रुंड थे जो अपनी छातियां ढूंढते चले जा रहे थे। उनकी कटी हुई गर्दनों से ताजा रक्त फव्वारे की तरह निकल रहा था। दूसरी ओर से नंगी तलवारें लिए शहंशाह के सैनिकों की पलटन चली आ रही थी। अदीब और दारा ने साथ साथ उन दोनों जुलूसों को देखा और अदीब ने कलयुग से दरियाफ्त किया, ये कैसे जुलूस हैं? तो कलयुग ने खुलासा किया, हुजूर आलिया, ये सरकटे लोगों का मातमी जुलूस आवाम और उन मामूली लोगों का है जो दारा शिकोह को प्यार करते हैं, और नंगी तलवारें दिए जो जुलूस आ रहा है वो औरंगजेब के सैनिकों का है। मातमी जुलूस तो समझ में आता है, पर सैनिकों का जुलूस किस लिए? मेरी समझ में सब आ रहा है और मैं सब देख सकता हूं, दारा बीच में बोला। सैनिकों के जुलूस के बीचों बीच देखिए, एक हाथी चला रहा है। सबने देखा, हाथी की पीठ पर एक बिना सिर का आदमी बंधा हुआ था, जिसे दिल्ली की सड़कों और गलियों में घुमाकर अब चांदनी चौक लाया गया था। दारा शिकोह, तुम इस सिरकटी लाश को पहचानते हो? अदीब ने पूछा। जी हुजूर, ये सिरकटी लाश मेरी है।
पृष्ठ 247।